HMV के पेश किए हुए इस कैसेट में आप दिलीप कुमार की अदाकारी के तल्ख और तीखे, भावुक और हंगामों भरे अंदाज देख रहे हैं। बस एक मोहब्बत की मिठास इस कैसेट में नहीं है, लेकिन उसका पूरा सामान हमने आपके लिए एक और कैसेट के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। इंतजार कीजिए। अच्छा, अब एक गरीब पत्रकार आपसे मिलने के लिए बेताब है।
मुझे इस रुपए की जरूरत है, क्योंकि इनसे मैं एक अखबार निकालना चाहता हूं और उस अखबार के जरिए दुनिया के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि डोगर भट्टी और ऐसी तमाम बस्तियां क्या हैं। ये बस्तियां, इनमें कितनी गरीबी, कितनी बेबसी, कितनी भूख और कितनी बीमारियां पलती हैं। किस तरह इनमें रहने वाले इंसान इंसानों की तरह नहीं, जानवरों की तरह पलते हैं। मैं इस रुपए से यह काम करना चाहता हूं।
इस पत्रकार के हाथ में है सत्य की मशाल, जो औरों को तो रोशनी देती है, लेकिन उसके अपने भाग्य को जलाकर राख कर देती है। जी हां, फिल्म है मशाल, जो रिलीज हुई थी 1983 में।
मुझे एस के वरदान कहते हैं। अब इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं।
आइए आइए।
ये तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्यों आया हूं।
देखिए मिस्टर वरदान, एक बात मैं आपको अच्छी तरह समझा दूं। आपके बारे में जो कुछ मैंने लिखा है ना, तो वो किसी जाती दुश्मनी की बिना पर था और ना ही किसी सबूत के बगैर।
नहीं नहीं साहब, आपने मुझे गलत समझा। मैं कोई शिकायत लेकर नहीं आया हूं, मैं तो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूं।
मर्दान साहब, हम आपकी दोस्ती के काबिल ही कहां हैं।
ये ना कहिए साहब, काबिल तो आप बहुत हैं, मगर जमाना बहुत खराब है विनोद कुमार साहब। उसने आपकी जरा भी कदर नहीं की। आपका अखबार देखता हूं ना, तो बड़ी तकलीफ होती है मुझे। इतना अच्छा लिखते हैं आप, इतना अच्छा लिखते हैं, और इतने मामूली कागज पर। बड़ा जबरदस्त अखबार निकाला है आपने, लेकिन देखता हूं कि आपका दफ्तर गोवर्धन रोड पर मेरी एक नई बिल्डिंग बन रही है, कुछ ऑफिस ब्लॉक्स भी हैं उसमें, अगर आप चाहें तो।
सुनिए मिस्टर वरदान, आप जो कहना चाह रहे हैं ना, वो मैं अच्छी तरह समझ गया। अब एक बात सुनिए, आपके यहां आने से पहले मैं कुछ काम कर रहा था, वो काम मुझको पूरा करना है, इसलिए इजाजत चाहता हूं।
भाई मान गए, आदमी बहुत होशियार है आप। चलिए साफ बात कर ले, रुपया कैश दे दूं? बाहर गाड़ी में पड़ा है, आप ही सोचकर बता दीजिए कितना। बता दीजिए ना।
ये थप्पड़ मैंने आपको इसलिए मारा मिस्टर वरदान, मैंने पहले काफी सोचा, मगर आपकी इस घटिया बात का इससे ज्यादा मुनासिब जवाब मेरी समझ में नहीं आया। आप जा सकते हैं।
ख्याल रखना अपना, समझे? कभी भी कोई तकलीफ हो या कोई परेशानी हो तो लिखना, तकल्लुफ नहीं करना बिल्कुल। वैसे तो हमारे पास है क्या भाई, क्यों सुधा, लेकिन हम हैं, समझे ना इसका मतलब, हम हैं। तुम्हारे पास कोई पेन है? पेन
जी, वो पेन मैं ले लूंगा।
नहीं, नहीं लेने की जरूरत नहीं है। अगले जमाने में जब लड़के घर से बाहर जाया करते थे तो बुजुर्ग उनके हाथ में तलवार दे दिया करते थे, लेकिन आजकल जमाना कलम का है। ये लो। अरे ये क्या है, ये क्या?
साहब आपका आशीर्वाद।
मेरा आशीर्वाद हर अच्छे काम के लिए तुम्हारे साथ है और जिंदगी भर रहेगा।
साहब, साहब ये बात मैं आपको खुद बताना चाहता था। साहब मैं प्रेस रिपोर्टर हो गया हूँ साहब, और साहब और ये आप ही ने मुझे दिया था ना, अब इससे वही लिखूंगा जो आपने मुझे सिखाया। साहब
सुन रही हो गीता, यही कह रहा था मैं।
जी साहब, साहब कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे साहब?
जो कह रहा था वो तुम जानते हो, फुटबॉल खेलते थे ना, उसमें हाफ टाइम के बाद इधर की टीम उधर और उधर की टीम इधर हो जाती थी, दोनों टीमों के गोल भी बदल जाते थे। बस यही कह रहा था मैं। किसी ने सच कहा है, मुसीबत आती है तो अकेली नहीं आती। देखो तो दो चार दिन के अंदर अंदर क्या कर क्या सुधा 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 सुधा
गाड़ी रोको। ए भाई साहब गाड़ी रोक दो, गाड़ी रोको भाई साहब। ए भाई साहब मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है, उसको उसको अस्पताल पहुंचाना है। भाई साहब वो मर जाएगी, आपके बच्चे जिए, हमारी इतनी मदद कर दो, उसको अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब। भाई साहब आपके बच्चे जिए। भाई गाड़ी रोको। ए भाई गाड़ी रोक दो, मेरी बीवी को अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब। ए भाई साहब ए भाई साहब ए भाई ए भाई साहब
हे भगवान।
विनोद
हजरा आया 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 सुधा सुधा